Siddhesya. Om Namah Siddhesya. Om Namah Siddhesya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Nithaviyattakamam. Viramnamiyunapattasauvattam. Anubhagasavihattim. Jaho vai samparu vemo. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अभी हम पांचवी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 17 पर आ गए हैं, 17। ये अनुभाग विभक्ति का प्रकरण चल रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा अभी मंदा में कि ये असंगी की बात ख्याल में नहीं आई, पेज नंबर कौन सी है बात? इन्हें ऐसा ही वहां व्यंतर में वगैरह समझना, ऐसी बात आई थी। देखो ऐसी बात है, जैसे असंगी जीव पहले नरक में उत्पन्न होते हैं, पेज नंबर 16। हाँ देखो, विशेषार्थ में हमने देखा था, विशेषार्थ पढ़ते पूरा। सत्ता में स्थित अनुभाग का घात करने के बाद जो अनुभाग शेष बचता है उसे हत समुत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्म कहते। सत्कर्म है ना सत्ता वाला कर्म, उसकी सत्ता। हत समुत्पत्ति के ने घात किया है। यहाँ तो केवल अनुभाग का ही प्रकरण है, यहाँ स्थिति की बात नहीं चल रही है। अनुभाग का जिसने घात किया है, ऐसे अनुभाग वाले असंगी के, असंगी में जो बहुत लंबे काल तक है उसने असंगी के योग्य वहां अनुभाग किया है, क्योंकि उसका बंध जो होगा तो असंगी के योग्य होगा। भले वो संगी में से असंगी में आया हुआ होगा तो कुछ काल के बाद वो असंगी के योग्य होता है, क्योंकि वो उत्कृष्ट बंध तो नहीं करता है, अपने योग्य करता है। तो असंगी के योग्य उसने अनुभाग सत्व कर दिया है। ऐसा जीव नरक में उत्पन्न होता है। कौन से नरक में? पहले ही नरक में उत्पन्न होता है। तो वहां उत्पन्न होने, शरीर ग्रहण करने के समय से लेकर वो नारकी जैसा बंध करेगा, परंतु विग्रह में यानी मोड़ में, कारमाण कायोग में जब तक है तब तक वो असंगी जैसा बंध करेगा, तो कहलाएगा वो नारकी। अभी असंगी नहीं कहेंगे, क्योंकि असंगी की पर्याय तो छूट गई। विग्रह गति में जब आया है तो उसको हम नारकी ही कहेंगे। नारकी होते हुए वहां जघन्य अनुभाग पूर्व का लेके आया है और नया अभी अधिक नहीं बांध रहा है, शरीर ग्रहण करने के समय से लेकर अधिक बांधेगा। शरीर पहला समय शुरू होने पर, आहार पर्याप्ति शुरू होने पर, शरीर की प्राप्ति होना का अर्थ होता है शरीर के परमाणु का ग्रहण करना, यानी शुरुआत आहार पर, सभी पर्याप्तियों की शुरुआत हुई, सभी एक साथ होती है ना, यानी उसको आहार ग्रहण शुरू होगा, यानी नौ कर्म आहार का ग्रहण शुरू हुआ। अभी तक कारमाण का योग था, अब वैक्रेक मिश्र का योग शुरू हुआ पहले ही समय से। उसको कहेंगे भव ग्रहण का पहले समय या शरीर ग्रहण का परि, शरीर ग्रहण कहते उसको। ख्याल में आती बात? पहले विग्रह गति में था, कारमाण का योग था, तो अनाहारक था, नौ कर्म की वर्गणा का ग्रहण नहीं हो रहा था। विग्रह के बाद वहां पहुंच गया तो वहां शरीर के वर्गणा का ग्रहण शुरू हुआ, आहारक हुआ, वैक्रिक मिश्र का योग चालू हो गया। तब से उसका जो बंध होगा वो नारकी अपर्याप्त के योग्य होगा, उसके पहले असंगी के योग्य था। नारकी फिर भी बंद वो असंग के योग्य कर रहा था जब तक विग्रह में था, मोड़ में, मोड़ वाली गति में था। यहां तक समझ में आई बात? तो ऐसा जीव पहले ही नरक में उत्पन्न होता है, दूसरे तीसरे आदि आगे के नरकों में नहीं उत्पन्न होता है। यही बात देवों में भी होती है। तो देवों में कहां उत्पन्न होता है, असंगी कहां हो सकता है? भवनवासी और व्यंतर दो ही में होता है। तो ज्योतिषियों का भंग कैसे होगा? जैसे दूसरी पृथ्वी से सातवीं तक जैसा ज्योतिषी में वैसा ही होगा, क्योंकि वहां कोई असंगी नहीं उत्पन्न हो गए, तो वहां का जघन्य कब कहलाएगा? कि वहां जो कोई उसने समय दर्शन प्राप्त किया है और उसमें भी अधिक विशुद्धि के द्वारा उसने अनुभाग का घात किया है, ऐसे जीव को होगा। इसलिए यहाँ क्या कहा विशेषार्थ के नीचे के दूसरी तीसरी लाइन में, ज्योतिषी देवों में इसी प्रकार जघन्य स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनका कथन द्वितीयादि नरकों के नारकियों के समान है। पहले नारकी के समान है, पहले नारकी के समान भवनवासी और व्यंतर का होगा, पर ज्योतिषी है वो, उसमें असंगी उत्पन्न नहीं होते, तो उसके दूसरे नरक के समान भंग होगा। यानी वहां जब विशुद्धि बढ़ेगी, जैसे सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानबंदी का विसर्जन किया है, तब उसका अनुभाग घटेगा, तो उसको जघन्य स्वामित्व वहां चलेगा उसका। अभी हम पृष्ठ संख्या 17 पर आ गए हैं।
जो जब स्थिति का घात होता है तभी अनुभाग का भी नियम से घात होता है, ऐसा नहीं है?
आप जो कहते हैं ना, जो स्थिति का घात होता है तो अनुभाग का भी नियम से घात होता है, घात तो होता है, परंतु अभी उसके लिए उसके अपने योग्य परिणाम अलग अलग है, और घात होगा ही ऐसा नहीं, वो भी मैं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि स्थिति तो हर समय एक समय कम हो रही है, अनुभाग का वैसा नहीं, हर समय एक एक निषेक तो गलेगा। एक मान लेते 70 कोड़ा कोड़ी की बांध ली, और फिर उसने 70 कोड़ा कोड़ी की नहीं बांध दी कुछ काल तक, तो क्या होगा? जघन्य स्थिति बांध रहा है, तो उसका एक एक निषेक गलेगा। ऐसे यहां नहीं है, क्योंकि अनुभाग है वो सभी निषेकों में पड़ा है, वो निषेक गलने से उसके अनुभाग नहीं कम होते।
नहीं, अधोगलन के सिवा
जब भी घात होता है तो स्थिति कांडक घात अलग होते हैं और अनुभाग कांडक घात अलग होते हैं। हो गए? जहाँ अपूर्व करण में स्थिति कांडक घात भी होते हैं, वहाँ अनुभाग कांडक घात भी होंगे, परंतु उसका काल का प्रमाण अलग है, उसकी जो कोई बातें विशेष बनती है, तो कहाँ होता है उसके क्रम से बात आएगी। अभी हम आगे जाएंगे ना, भुजगार, अल्पतर, वो सब आएगी बात। जैसे हमने निषेकों के बारे में विस्तार से जाना है, कितनी वृद्धि हो सकती है, कितनी हानि कैसे होती है। अभी यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है? स्वामित्व का। हमने तीर्यंचों में भी देखा, तीर्यंचों में किसके होता है जघन्य अनुभाग? सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त। अब जो सूक्ष्म एकेंद्रीय वाला जो जीव अन्यत्र उत्पन्न होता है, जघन्य अनुभाग के साथ गया है, और जब तक उत्कृष्ट नहीं बांधता है तब तक उसको ये जघन्य अनुभाग वहां भी पाया जाएगा। तो ये सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? हाँ, मनुष्य और तीर्यंचों में। और यहाँ तीर्यंच मार्गणा है, तो तीर्यंचों में घटित होता है, वही सारी यहाँ लिस्ट बता दी है, विशेषार्थ भी हमने देखा था कल। अब यहाँ पंचेंद्रिय तीर्यंचों में, तीर्यंचों के जो भेद है, कौन कौन से भेद है आपको याद है? तीर्यंचों के भेद जिसको आलाप कहते हैं, एक तो तीर्यंच बताया ने सामान्य तीर्यंच, फिर
पर्याप्त तीर्यंच,
पंचेंद्रिय तीर्यंच,
पंचेंद्रिय,
फिर पंचेंद्रिय पर्याप्त तीर्यंच और योनिमति और पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, ऐसे पांच भेद होते हैं। यानी गति मार्गणा में ये पांच भेद है। इंद्रिय मार्गणा में कहेंगे एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, वो तो सभी जीवों की अपेक्षा वो मार्गणा होगी। देखो, पंचेंद्रिय तीर्यंचों में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? अभी जघन्य चाहिए, ये तो जघन्य का बंध ये स्वयं नहीं करेगा, परंतु पूर्व भव से जघन्य के साथ आया हुआ जीव ले सकते हैं यहाँ पर। जिसने अनुभाग हत समुत्पत्ति किया है, ये स्थिति की बात नहीं, अनुभाग, तथा जो सूक्ष्म एक इंद्रिय से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय में उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो पंचेंद्रिय तिर्यंच जघन्य सत्कर्म के ऊपर जब तक अनुभाग बढ़ाकर नहीं बांधता, तब तक उसके जघन्य अनुभाग होता है। विग्रह में है वो संगीत, वो उसको पंचेंद्रिय तिर्यंच ही कहेंगे हम, जब तक वो शरीर ग्रहण नहीं होता तब तक। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, मनुष्य अपर्याप्त, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्त में भी सूक्ष्म एकेंद्रिय में से आया हुआ उसमें भी ऐसे ही घटित होगा। सब बादर एकेंद्रिय, ये मनुष्य पर्याप्त को क्यों छोड़ा भानु बहन?
वहाँ पे विग्रह में असंगी जैसा बंद होता है,
वो कारण नहीं है। पर्याप्त मनुष्य को क्यों छोड़ा?
अच्छा
हाँ बोलो, उसका जघन्य अनुभाग तो क्षपक श्रेणी में होगा। ख्याल में तो नहीं है जघन्य अनुभाग का स्वामी चल रहा है। देखो कोई बात आती है तो थोड़ा सोचना, मैं भी पहले सोच रही थी, अरे सूक्ष्म एक इंद्रिय तो मनुष्य पर्याप्त में भी उत्पन्न होता है तो उसको क्यों छोड़ा, परंतु तो उसमें जो जघन्य अनुभाग होगा वो तो क्षपक श्रेणी में होगा। सब बादर एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक, ये पर्याप्तक लिया क्यों? वो अपर्याप्त में से आया हुआ जीव लेना था, तो सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त में तो उतना जघन्य नहीं है, मगर वो पूर्व भाव से लेके आया है उसका जघन्य पाया जाता है। सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कहा था वो तिर्यंच मार्गणा में यानी गति मार्गणा में, अब पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहते हैं, ये कौन सी मार्गणा होगी? हाँ भानुवे, पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहते हैं तो मार्गणा कौन सी है? इंद्रिय मार्गणा। इंद्रियों की अपेक्षा एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुरेन्द्रिय पंचेंद्रिय से भेद है। सब पृथ्वी कायिक, अब ये किस मार्गणा की बात चलेगी लक्ष्मी बेन? काय मार्गणा, बहुत अच्छा, षट कायिक उसमें आते हैं ना। सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक, सब बादर वनस्पति कायिक, सब बादर निगोद, सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्तक पर्याप्त लिए क्योंकि अपर्याप्त को पहले ही लिया था, उसमें से आए हुए जीव लेने हैं सभी। सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक, त्रस अपर्याप्तक, कार्मण कायोगी, हाँ वो कॉमन निकाल देना, सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त एक शब्द है। कार्मण काय योगी, क्योंकि अन्य योग में से अभी कार्मण काय योग में आया है उसकी बात चल रही है, क्योंकि मरकर आता है ना, ये सूक्ष्म में से आया है, कार्मण काय योग में आया है, अन्य भव में जा रहा है, कार्मण काय योगी। और अनाहरक, जो कार्मण काय योगी है वे अनाहरक भी है, विशेषार्थ इन सब मार्गणाओं में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों की उत्पत्ति संभव है और यथा संभव शरीर ग्रहण के पूर्व तक, ख्याल है ना, शरीर ग्रहण का अर्थ क्या है? जब आहार खो जाता है, जिस पहला समय पर्याप्ति शुरू होने का पहला समय, नौ कर्म वर्गणा का ग्रहण का पहला समय, ये पहले क्यों नहीं ग्रहण करता है, अभी क्यों ग्रहण करता है? विग्रह गति में क्यों नहीं करता है? हाँ, क्यों होता है अनारक? वहां कर्म को तो ग्रहण करता है, नौ कर्म को ग्रहण करने को क्या गया उसका?
मिश्र काय योग का,
हाँ वो क्यों नहीं ग्रहण करता, वही तो हम पूछ रहे हैं।
नाम कर्म का उदय नहीं,
हाँ कौन से नाम कर्म का उदय नहीं, बोलो बोलो, अभी जरा दुरुस्त आए मार्ग पर आए, हाँ बहुत अच्छा। शरीर नाम कर्म का उदय विग्रह गति में नहीं है, वह पहुंचने पर शुरू हो जाता है, शरीर नाम कर्म का, वो शरीर नाम कर्म है, अंगोपांग जो यथा योग्य होगा, फिर वो संस्थान नाम कर्म, ये सब वहां जाने पर वहां होते, विग्रह गति में उनका उदय नहीं होता। नाम कर्म के हमने 5 स्थान देखे थे, याद है, उदय के, थोड़ा याद करेंगे पहले की बात। विग्रह गति में नाम कर्म के उदय कोई अलग है, और शरीर ग्रहण के पहले समय से और कुछ उसमें ऐड हो जाता है, कुछ माइनस होता है और कुछ ऐड होता है। अनुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में है, और जब शरीर ग्रहण शुरू हो जाता है तो अनुपूर्वी का उदय मिट जाता है, और उसके बदले और क्या क्या शुरू होता है, शरीर नाम कर्म होगा, प्रत्येक या साधारण होगा, वो अंगोपांग नाम कर्म का उदय, वो सब वहां शुरू हो जाता है। तो किस जगह कितने नाम कर्म का उदय है, ये उसकी लिस्ट है। तो विग्रह गति में अलग होगी, शरीर ग्रहण से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक, पूरी होते ही वो अलग शुरू होगा, तो उसको मिश्र कहेंगे। फिर उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति होती है और श्वासोश्वास पर्याप्ति होती है, भाषा पर्याप्ति होती है, तो उसमें अलग अलग नाम कर्मों का उदय चालू हो जाता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर विहायोगति, फिर आतप उद्योग जिसके होगा उसके, और वो परघात आदि कर्मों का उदय चालू हो जाता है। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होने के बाद वो श्वासोश्वास शुरू हो जाता है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो स्वर नाम कर्म का उदय चालू होता है, और फिर वो अंत तक उसको भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। मन से कोई संबंध नहीं है, इसे 5 अलग अलग काल है। तो यही बात है, यहाँ क्या कहा, शरीर ग्रहण करने के पूर्व तक, शरीर ग्रहण करने पर उसका वो जो अनुभाग का बंध है वो भी बदल जाता है, अधिक होगा। जब तक वो विग्रह में है, पहला शरीर छूट गया है, मरण हो गया है, अब विग्रह में आया तो नई गति भी चालू हो गई, वो पंचेंद्रिय हो गया या मनुष्य पर्याप्त हो, जो कोई है उसका वो भव शुरू हो गया। उस भव में होते हुए भी अभी बंध कैसा है, पूर्व जैसा, जो सूक्ष्म एकेंद्रिय में से आया है तो वैसा ही यहाँ भी बंध चल रहा है, इसलिए इनका कथन पंचेंद्रिय तिरेंचों के समान किया है। ये केवल यह मनुष्य अपर्याप्त तो क्यों लिया, उसका हमने कारण देखा था, क्योंकि पर्याप्त तो मनुष्यों में जो जघन्य है वो क्षपक श्रेणी में होता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे अभी हम, ये देवों की देव गति में, गति मार्गणा की अपेक्षा देवों में बात हो रही है। सामान्य देव, भवनवासी व्यंतर और वैकृत मिश्र का योगियों में, सामान्य देव, भवनवासी और व्यंतर, ये तो देव गति गति मार्गणा की अपेक्षा कहा, और वैकृत मिश्र का योग, ये कौन सी अपेक्षा है, कौन सी मार्गणा है, का योग मार्गणा कौन सी, वही मैं पूछना चाहती थी, काय मार्गणा है कि योग मार्गणा है। देखो मैंने क्या पूछा, बहुत अच्छा, योग मार्गणा, वैकृत काय योग, योग की बात चल रही है ना, काय मार्गणा नहीं चली, काय मार्गणा में कौन से है, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक वगैरह वगैरह, 5 स्थावर का एक और एक त्रस का एक, ये काय मार्गणा का भेद है, और यहाँ ये योग मार्गणा की भेद है बात चल रही है। वैकृत मिश्र का योगियों में नारकियों की तरह भंग होता है। नारकियों की तरह क्यों कहा, जैसे नरक में असंगी जीव उत्पन्न होते हैं और पूर्व का जघन्य अनुभाग के साथ उसमें उत्पन्न होते हैं, विग्रह गति में है तब तक वैसा ही अनुभाग रहता है, ऐसे ही सामान्य से देवों में वही कथन होगा। परंतु जब सामान्य से कहते हैं तो विशेष की अपेक्षा बात करनी है, तो भवनवासी और व्यंतर में ही वो उत्पन्न हो गए, अन्य कहीं भी नहीं, इसलिए भवनवासी और व्यंतर को लिया, ज्योतिषी को छोड़ा। अब वैकृत मिश्र का योगी नारकियों की वैकृत मिश्र का योगी में नारकियों की तरह भंग होता है, अर्थात जैसे पहले नरक में मुनि का जघन्य अनुभाग बतलाया है वैसे ही इनमें भी होता है, क्योंकि हतसमुत्पत्ति कर्म वाला असंगी जीव इनमें भी जन्म ले सकता है। परंतु वैकृत मिश्र का योगियों में उसने अनुभाग बढ़कर नहीं बांधा, ऐसा अर्थ होगा इसका, या उसमें भी जघन्य होगा वहां पर। सौधर्म स्वर्ग से लेकर देवगति की बात चल रही है, इसलिए अलग अलग देवों में ये घटित कर रहे हैं। सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? क्या पूछा? सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में, अब उसका उत्तर पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा आप लोगों को। हाँ, तो कहते हैं एक भव में दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर पश्चात दर्शन मुनि का क्षपण करके, क्यों? ये अनुभाग कांडक घात बहुत बार कराने हैं, तो पहले में पहले दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़ाए उसको, पश्चात दर्शन मुनि की क्षपणा की, तब भी अनुभाग कांडक घात हुए, अनुभाग घट गया, पुनः विवक्षित देवों में उत्पन्न हुआ है। विवक्षित क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पूछा था सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, उसके मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। हाँ हाँ, मुनि अवस्था का जो पहले स्वर्ग में भी जा सकते हैं। हाँ, कितनी आयु बांधी उस पर है ना। हाँ, अच्छा आप कहते हैं मिथ्या दृष्टि ग्रह वेग तक जावे, और ये तो दो बार उपशम श्रेणी चढ़कर क्षपणा करके पहले स्वर्ग में जावे। हाँ, तो अच्छा है ना, क्योंकि वहां से आते ही वो मुख जाने वाले ही है, क्योंकि क्षायिक है ना। इसी प्रकार वैकृत कायोगियों में जानना चाहिए, वैकृत कायोगियों में भी जघन्य किसका होगा? इसी जीव का, क्योंकि यही जीव आगे वैकृत कायोग होने वाला है। हाँ,
आयु का कम जाना बंद, कम ज्यादा बंद होना, वो किसके पर निर्भर है?
हाँ, आयु का कम बंद या ज्यादा बंद कैसे होगा? तो अधिक मंद परिणाम लंबी आयु बनती है।
अधिक मंद परिणाम लंबी
मंद आयु। मंद परिणाम विशुद्धि ज्यादा आयु लंबी, विशुद्धि ज्यादा यानी मंद परिणाम, मंदता की ओर ज्यादा यानी विशुद्धि ज्यादा, तो आयु लंबी बनेगी। विशुद्धि कम आयु छोटी बनेगी। छोटी आयु क्यों बनती है? संकलेश से बनेगी ना। अभी यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे, ये तो देवायु बांध रहे हैं, देवायु बांध रहे हैं, सम्य दृष्टि है, तो जिसकी विशुद्धि ज्यादा है वो ऊपर के देवों की आयु बांधेगी। और ऐसा भी है ना, फिर उसका आयु तो बंधी है, उस जाति के उसके लेशा भी मरण में वैसी होगी। सौधर्म जन्मने वाला पीत लेशा में मरकर वहां उत्पन्न होता है, परंतु आयु तो पहले निश्चित हुए, मरण के समय तो नहीं हुई है। तो जैसी देखो, ये सारा सुनिश्चित है, ऐसे नहीं कि उसने अरे अरे उसने उत्कृष्ट आयु बांधी थी और शुक्ल लेशा में मरेगा तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये बात है ही नहीं, ये पड़ेगा बिड़ेगा की बात ही नहीं होती। वैसा ही सहज उसके परिणाम भी वैसे होंगे, उसकी लेशा वैसी होगी, उसको मरकर वहां ही उत्पन्न होगा। वो मर गया और वहां नो एंट्री होगी तो तो वहां का कोई जीव नहीं मरेगा, तो जितने जन्म ही उतने ही मरेंगे भी वहां से। आप कहेंगे जैसे हमारे यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, ज्यादा जन्म ले और मरते नहीं है जल्दी, ये तो यहाँ की बात आपको पता चल रही है ना। पूरी मनुष्य लोक की संख्या देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही है। हाँ, फिक्स नहीं, उत्कृष्ट संख्या फिक्स है, उत्कृष्ट, परंतु उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, फिर भी इन जनरल ऐसी बात है, जितने उसमें आएंगे उतने ही मरकर अन्यत्र चले जाएंगे। ये तो उनकी संख्या तो कायम, जैसे अभी यहाँ भारत में चीन में तो इतनी भीड़ है। हाँ, अभी वहां चले जाओ डेनमार्क आदि में, वहां तो उल्टा है प्रोपोर्शन, कम हो रही है वहां पर, उनको तो बढ़ावा देना पड़ता है, जरा बढ़ाओ संख्या,
इंसेंटिव दे।
जब हम मनुष्य की संख्या कहेंगे तो सभी जीव लेना, भाव भोग भूमि के, कर्म भूमि के, डाई द्वीप में, जितने
भूमि में जीवों की संख्या कम होती,
कम होगी ना,
कर्म भूमि में ज्यादा होती है।
भोग भूमि तो फिक्स रहती है, क्यों बोलो? जुगलिये उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होती है, माँ बाप मर जाते हैं, यानी जितने उत्पन्न होते उतने मर भी जाते हैं, तो वहां तो कांस्टेंट रहेगी ना उनकी संख्या, क्योंकि एक माँ बाप को तो दो बार कोई जन्मने नहीं, वो तो जन्मते ही वो मर जाते हैं। ऐसा कितने साल तक चलेगा? अठारह कोड़ा कोड़ी से अपन भारत क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, यहाँ की बात चल रही है। हाँ, तीन गति के बारे में होगा, तीन आयु के बारे में होगा, मनुष्यायु, देवायु और तिर्यंचायु, क्योंकि ये तीन शुभ आयु है। शुभ आयु का बंध मंद परिणाम से लंबा होगा, और नरकायु मंद परिणाम से कम बंधेगी, और संकलेश तीव्र है तो सातवें नरक की बंधेगी, है ना? इसके प्रोपोर्शन उल्टा है। अन्य कर्मों में जितनी विशुद्धि ज्यादा उतनी स्थिति कम बंधेगी। अभी जैसे जहां विशुद्धि ज्यादा होती है वहां स्थिति कम ही बनती है ना, ऐसे नहीं कि समय दृष्टि हुआ विशुद्धि बढ़ रही है तो स्थिति भी लंबी नहीं बने, वहां तो स्थिति कम ही बंधेगी कर्मों की टोटल, क्योंकि समय दर्शन होते ही उसके हमने देखा था उपशम प्राप्त करता है तो पहले ही अंत कोड़ा कोड़ी कर देता है और नया बंध उसको कम ही होगा।
इसलिए मैंने नाम कर्म के लिए पूछा था, क्योंकि उत्तम सवनन और उत्तम संस्थान है, वहाँ पे अनुभाग ज्यादा होगा तो वो सोलिड हो जाएगा।
नहीं, देखो उत्तम सवनन किसका अनुभाग कितना होगा, इसके हमने 64 अल्प बहुत्व देखे थे, याद है? ये हमारे हमें लगता है इसका अनुभाग ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर किस कर्म का अनुभाग कितना है, किससे कौन सा ज्यादा है, इसके हमने लिस्ट पढ़ी थी, आपको याद होगा तो। अब हम बढ़ेंगे आगे 18 पेज पर, 26 नंबर का पॉइंट, आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? देखो ये कौन से मुनिराज है, हाँ, तो ये जघन्य, ये तो आहारक का योग में तो क्षपणा नहीं कर रहे हैं, पहले जो कर चुके हैं वो जीव लेना, यहाँ जैसे देवों में हमने देखा था, तो जिसने दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर नीचे उतर कर दर्शन मुनि का क्षपण करके पीछे आहारक शरीर उत्पन्न किया है, आहारक शरीर उत्पन्न करने वाले तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, तो ये आहारक का योग में आने के पहले दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़ के उतरे हैं, बाद में क्षपणा की है दर्शन मुनि की और फिर आहारक का योग उत्पन्न हुआ है, उनके जघन्य अनुभाग होता है। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि संयत भी कैसा लेना है, दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर आया है, बाद में एक सपना की है और परिहार विशुद्धि संयत प्राप्त किया है।
यहाँ पे इसे नहीं हो सकता है, पहले सपना की और पीछे दो बार श्रेणी चढ़ गए,
इसलिए स्पेसिफिकली के बाद में उन्होंने एक सपना की। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत में जानना चाहिए। स्त्री वेदी जीवों में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? क्षपक श्रेणी वाले सवेदी जीव के अंतिम समय में होता है। स्त्री वेद के साथ जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है, स्त्री वेद के उदय का जो अंतिम समय है, तब तक उसको स्त्री वेदी कहेंगे, बाद में उसको अपगत वेदी कहेंगे। इसी प्रकार पुरुष वेदी और नपुसक वेदी के जानना चाहिए।
ये क्या, जिसने दर्शन मुनि की सपना की है वो दो बार कितनी बार मैक्सिमम उपशम श्रेणी चढ़ सकता है?
दो बार, एक भव में दो बार, एक भव में दो ही बार हो सकता
नहीं,
है
जिसने सपना कर दी है दर्शन मुनि की, उसके पश्चात भी दो बार चढ़ सकता है?
क्षपणा करने के बाद दो बार करता है कि नहीं करता, ये प्रश्न आपने पूछा है, और यहाँ बार बार दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर क्षपणा, ऐसा कहीं आया नहीं है कि शायद दो बार नहीं चढ़ सकता है? हाँ। अभी तक हमने तो नहीं पढ़ा है ना, उसके अनुभाग घात में कोई अंतर होता होगा, देखेंगे कभी आगे आता है क्या। देखो इसी प्रकार पुरुष वेदी और नपुसक वेदी के जानना चाहिए, नहीं उनके उदय के अंतिम समय लेना, वहां पर तीनों कषायों में भी इसी प्रकार जघन्य अनुभाग होता है। इसी प्रकार होता है कि अपने अपने कषाय का उदय का अंतिम समय, जीव को क्रोधी कब तक कहेंगे, क्रोध कषाय वाला,
क्रोध का उदय
जब तक उदय हो सकता है तब तक, नवे के कौन से भाग तक उसका उदय है, नवे गुण स्थान के कौन से भाग तक क्रोध का उदय है?
अपगत वेदी होने के पश्चात। हाँ, अपगत वेदी के उदय होने के पश्चात
उसको नवे गुणस्थान का कितवा भाग कहेंगे?
नहीं,
दूसरा,
दूसरे भाग में तो स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का सही होता है ना?
आप अलग बात, देखो नवे गुणस्थान के भाग कौन से है, पांच भाग। पहले भाग में वेद का उदय है, उदय है। दूसरे भाग में वेद का उदय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ चारों में से किसी का भी हो सकता है, परंतु क्रोध का उदय यहाँ तक है। तीसरे भाग में क्रोध का उदय अभी मिट गया है, यानी क्रोध का उदय कब तक है, दूसरे भाग तक है। मान का उदय तीसरे भाग तक है, माया का चौथे भाग तक, और लोभ का
सूक्ष्म संप्रय के अंत तक,
दसवें तक,
दसवें
तक। लोभ का पूछा नहीं, लोभ का यानी सूक्ष्म हो या बादर लोभ, दोनों लोभ ही है। तो लोभ का उदय कब तक कहेंगे, लोभ वेदक दसवें के अंत तक। हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, तीन कषायों में भी इसी प्रकार जघन्य अनुभाग होता है। इतनी विशेषता है कि सकषाय जीव के अपने अपने कषाय के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है। अर्थात जैसे वेद की अपेक्षा क्षपक श्रेणी वाले सवेदी के अंत समय में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है, वैसे ही क्रोध कषाय की अपेक्षा क्षपक श्रेणी वाले सकषाय जीव के क्रोध कषाय के अंतिम समय में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। क्योंकि क्रोध कषाय वाले कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है, क्रोध कषाय वाले
1 से 9।
हाँ, पहले से नवे के दूसरे भाग तक। तो इन सभी जीवों में जघन्य अनुभाग कब पाया जाएगा मोहनीय का,
क्षपक श्रेणी के
दूसरे भाग के जो अंत समय है, ये बात यहाँ बताना चाहते। पहले गुणस्थान वाला भी क्रोध वाला क्रोधी है, चौथे वाला भी क्रोधी है, और वो नौवे का दूसरा भाग वह भी, वहां भी क्रोध का उदय है। इन सभी जीवों में वो क्रोध के उदय का जो अंतिम समय है, वहां पर मोहनीय का जघन्य अनुभाग है। क्रोध का कितना है उसकी बात नहीं पूछ रहे, मोहनीय इन जनरल बात चल रही, मूल प्रकृति की बात चल रही यहां पर। मान कषाय की अपेक्षा मान कषाय के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है आदि, ऐसे माया और लोभ में भी लेना। अकषाय जीवों में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है, एक बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरकर पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़कर जो जीव उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त हुआ है, वो कषाय कौन है, तो उपशांत कषाय को अकषाय कहेंगे, क्योंकि मोहनीय की सत्ता वाले चाहिए, और ऐसे सत्ता वाले चाहिए कि मिनिमम अनुभाग होना चाहिए। तो एक बार चढ़े तो भी अनुभव घटाया था, फिर दोबारा चढ़ेंगे तो और उसने फिर दोबारा घटाया है। तो दूसरी बार जो उपशांत में आया है, पहले चढ़ के उतरे और फिर दोबारा चढ़े, इसी प्रकार यथाख्यात संयतों के जानना चाहिए।
उस कषाय में समाधि रहता है अंतर्भूतक,
हाँ उपशांत कषाय में तो समान रहता है, परंतु वो फिर उतर कर फिर चढ़े है ना जीव, तो उन्होंने फिर अनुभव घटाया है। उन्होंने ऐसा कहा, ग्यारहवें गुणस्थान में लगातार किसी भी समय में उतना ही अनुभाग रहेगा, क्यों? वहां विशुद्धि की बढ़ना नहीं होता है, परिणाम समान है। ग्यारहवें के सभी समयों में परिणाम उतने के उतने वितराग है, पूर्ण वितराग है, वहां कोई विशुद्धि बढ़ने का सवाल नहीं ना, मैक्सिमम टॉप पर आ गए अभी।
आगे हमने जो देखा था शपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक, उसकी अपेक्षा यहाँ पे अनुभाग में कोई फर्क पड़ेगा?
हाँ, ये फिर इन्होंने कर्म बहुत सारा खिपाया है।
हाँ।
अब ये गुणित कर्मांशिक उसमें फिर वो कितने परमाणु भी गए हैं उसकी भी बात आएगी। गुणित कर्मांशिक क्षपित कर्मांशिक आपको जो याद आ रहा है, तो परमाणु की संख्या उसके पास कितनी है, हाँ। प्रदेशों की अपेक्षा बात थी, यहाँ अनुभाग की अपेक्षा बात चल रही है, और पहले हमने देखा वो स्थिति की अपेक्षा बात की थी, अभी प्रदेशों की चर्चा ही नहीं यहाँ पर।
नहीं ऐसे, क्योंकि शपित कर्मांशिक के उनके
शपित और गुणित में हमने परमाणु की संख्या को देखा था। प्रदेश,
हाँ, प्रदेश।
क्या लिखा है कहाँ पर? विषय परिचय में, हेडिंग में, हाँ हाँ प्रथम पृष्ठ पर जो लिखा है उसके बारे में आपका पंचम अधिकार। वो अभी हमने शुरू नहीं किया, प्रदेश विभक्ति की बात, अभी अभी अनुभाग विभक्ति की बात चल रही है। देखो अभी तक तो हमने द्वितीय अधिकार समाप्त किया था, चौथी पुस्तक में भी द्वितीय अधिकार था।
अभी बुक में खाली अनुभाग का ही लिखा है,
अंदर देखो अनुभाग विहत्ति नाम चौथो अथारो, अंदर अंदर जहाँ हमने अभी मंगलाचरण देखा है वहाँ कितवा अधिकार लिखा है, अनुभाग विहत्ति नाम चौथो अथारो। अर्थाधिकार की बात चल रही नहीं, यहाँ पुस्तक की बात नहीं चल रही यहाँ पर। चलो अभी हम मूल प्रश्न आते हैं, अकषाय जीवों की बात हमने देखी है। विभंग ज्ञानियों में, ये विभंग ज्ञानी गुणस्थान
एक से चार, एक दो
तीन और चार,
नहीं नहीं,
विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ही होगा, और वो भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों को होगा। गुणस्थान
पहला,
पहला दूसरा, तीसरे गुणस्थान को मिश्र ज्ञान कहेंगे, तो दो गुणस्थान हैं। तो विभंग ज्ञानियों में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? देखो जो दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उससे नीचे उतरकर आगम के अनुसार विभंग ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात मरकर उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व को प्राप्त करके, देखो क्या क्या हुआ, दो बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे हैं, मुनिराज है और मरकर वो ग्रेवेक में उत्पन्न हुए हैं, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हुए, और वहां जाके मिथ्या दृष्टि हुए, परिणामों की विचित्रता। मरकर उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व को प्राप्त करके, ख्याल में आई ना बात, विभंग ज्ञानी हो जाता है, उसके मोनी कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। ग्रहिक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व में गए। हाँ, अब सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयतों में मोहनीय करना, मीहनीय हुआ, मोहनीय कर्म का मिला चौथी लाइन की स्टार्टिंग में। जघन्य अनुभाग किसके होता है? क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अंतिम समयवर्ती जीव के होता है। ऐसा क्यों लिखा? हाँ मंजू बेन, हाँ हाँ, सामायिक छेदोपस्थापना नवे तक होती है और नवे में भी क्षपक वाला लेना है, क्योंकि क्षपक की तो अनुभाग और मिनिमम पॉसिबल होगा, तो अंतिम समय लेना उसका। अब लेशा मार्गना की अपेक्षा बता रहे, लेश तेजो लेशा, तेजो यानी पीत लेशा और पद्म लेशा में सौधर्म स्वर्ग की तरह भंग जानना चाहिए, जानन हुआ, जानना चाहिए। क्या देखा था हमने सौधर्म में? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ा है, बाद में एक सपना की है और फिर वहां उत्पन्न हुआ है।
तेजो लेशा तो मुनि को सातवें गुण स्थान तक होती है, तो मनुष्य गति में
देखो तेजो लेशा में अभी हमें को चाहिए। हाँ। तेजो लेशा कंटिन्यूस रहने चाहिए, बात नहीं है। तेजो लेशा में आया है जघन्य अनुभाग के साथ। हाँ। तो मनुष्य में जब तक सातवें तक थे तो तीन कोई भी शुभ लेशा थी, उसके बाद जब उपशम श्रेणी चढ़े तो शुक्ल लेशा हुई, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर उन्होंने क्षपणा की, दर्शन मुनि की क्षपणा की। ऐसे मुनिराज अभी तेजो लेशा वाले स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं, तो उनका जघन्य अनुभाग होगा वहां पर।
नहीं, जो मुनि जो शपक श्रेणी के सन्मुख है और उसकी तेजो लेशिया है, उसको मिनिमम अनुभाग नहीं हो सकता है?
शपक श्रेणी के सन्मुख है ऐसा लिया दे,
क्योंकि सातवें गुणस्थान में तो पीत और पद्म दोनों हो सकती है।
यहाँ तो देवों में उत्पन्न कराया उन्होंने, यहाँ लिखा ना, जो दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर पीछे दर्शन मुनि का क्षय करके देवों में उत्पन्न हो, क्षपक श्रेणी के सन्मुख वाले को नहीं लिया है, और वहां उसके तेज या पद्मलेशा हो तो तेजोलेशा या पद्मलेशा की अपेक्षा उस जीव के मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। वेदक सम्य दृष्टियों में मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? जो दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतर कर दर्शन मुनि का क्षय करके कृतकृत्यपने को प्राप्त हुआ है, तब तक उसको वेदक कहेंगे ना, कृतकृत्य वेदक तक तो उसको वेदक ही कहेंगे। उसके प्रथम समय में मुनि का जघन्य अनुभाग होता है,
ठीक है, कृतकृत्य वेदक होता है उसके, उसको उस पश्चात जो क्षय करता है सम्यक्त्व का, तो लास्ट समय में नहीं ले सकते, पहले समय में लिया है,
क्योंकि वहाँ सम्यक प्रकृति की बात नहीं चल रही है। मुनि इन जनरल
समय में और कम हो जाएगा कि नहीं?
लास्ट समय में कम किसका होगा? सम्यक प्रकृति का होगा, सामान्य से कैसे होगा?
अच्छा, वहाँ पे
जब क्षय हो रहा है, क्षय के शुरू में जब तक कृतकृत्यपने को प्राप्त नहीं हुआ था तब तक तो कांडक घात हो रहे थे,
उसके
पश्चात कांडक घात तो रुक गए हैं, इसलिए कृतकृत्य का पहला समय लिया। और सम्यक प्रकृति की बात करनी तो कृतकृत्य का अंतिम समय लेंगे, सम्यक प्रकृति का जघन्य करना है तो। यहाँ मोहिनी की जैन जनरल बात करे ना, तो जिसका कोई वहां चल रही है
तो
मोहिनी इन जनरल,
कांडक नहीं हो रहा है तो पहले समय लिया है तो अंतिम समय तक तो वो सेवी रहेगा, तभी तक तो वेदक कहलाएगा।
वही तो कांडक घात रुक गए हैं,
तो पहले समय
कृतकृत्य वेदक के पहले समय में उसका जघन्य है वहां पर। इसी प्रकार उपशम समय दृष्टि के जानना चाहिए, वो तो उपशम श्रेणी चढ़ पर वो उतना है द्वितीय उपशम में से, तो वो वेदक सम्यक तो प्राप्त करेगा, और फिर उसने दर्शन मोनी का क्षय चालू किया है और कृतकृत्य वेदक में आया है, ऐसा जीव लिया। अब यहाँ उपशम समय दृष्टि में कुछ विशेषता होगी, किंतु इतनी विशेषता है कि उपशांत कषाय गुणस्थान के काल में विद्यमान अथवा नीचे उतर कर विद्यमान उपशम समय दृष्टि जीव के मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। और उपशमिक समय दृष्टि इतना ही लिया ना, तो ये द्वितीय उपशम वाला लिया। कौन सा? एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, दोबारा चढ़ा है, दोबारा चढ़ने के बाद या तो ग्यारहवें में है या नीचे कहीं भी आया हुआ है, क्योंकि अनुभाग एक बार घटाया है तो नीचे आकर ज्यादा तो नहीं बांधेगा, तो दूसरी बार उसने घटाने पर वो नीचे आया है। जब तक वो उपशम सम्यक दृष्टि रहा है तो उसका अनुभाग भी उपशम सम्यक के योग्य जघन्य कहलाएगा, यानी वेदक होने पर अनुभाग नहीं पड़ेगा, परंतु हमारा क्राइटेरिया उपशम सम्यक दृष्टि का है। उपशम सम्यक के काल में जघन्य से जघन्य कब है? दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़कर ग्यारहवें में गया है या उसके बाद उतर कर नीचे भी आया है, तब भी उसको जघन्य अनुभाग कहेंगे। अर्थात ये आगे लिखते हैं, वह उपशम समय दृष्टि ग्यारहवें गुणस्थान में हो या उससे नीचे उतर गया हो, उसके मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है।
तो जैसे ऊपर चढ़ते समय अपने अच्छा यहाँ पे तो विशुद्धि नहीं बढ़ती है,
ऊपर चढ़ते समय उसके अनुभाग कांडक घात हुए थे, नीचे उतरते समय निर्जरा तो बहुत होगी
पर विशुद्धि नहीं बढ़ती,
क्षपित कर्मवंशिक में और आगे उसके कर्म खिरेंगे परंतु अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ख्याल में है ना बात? चढ़ते समय अनुभाग कांडक हुए थे, उतरते समय उतनी असंख्यात गुणी निर्जरा तो उसकी वहां भी होगी, गुण श्रेणी वगैरह का कार्य वहां चलता ही रहता है, प्रदेश यानी परमाणु तो फिर जाएंगे परंतु सत्ता में जो है उनके अनुभाग में कोई परिवर्तन वहां नहीं होगा।
चढ़ते समय जैसे विशुद्धि बढ़ती है ऐसे उतरते समय,
उतरते समय कैसी बढ़ेगी, तभी तो नीचे आता है,
कम होते
कम होगी विशुद्धि, परंतु उससे अनुभाग बढ़कर नहीं बांधेगा। समय दृष्टि जीव है, अनुभाग जितना है उससे बढ़कर तो बांधेंगे ही नहीं कभी, परंतु जहां विशुद्धि अधिक है वहां कम तो होगा। वो कब होगा? उपशम श्रेणी चढ़ते समय, क्षपणा करते समय, इसी प्रकार सांसाधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टियों के जानना चाहिए, यानी उनमें भी ऐसा ही वो जानना। हाँ, दो बार उचड़कर उतरा है, नीचे आए हैं, दूसरे में आए हैं। विशेषार्थ, ऊपर सौधर्म स्वर्ग से लेकर जिन मार्गणाओं में मुनि कर्म के जघन्य अनुभाग का स्वामित्व बतलाया है, उनमें यदि क्षपक श्रेणी संभव है तो क्षपक श्रेणी में अपने अपने क्षय काल के अंतिम समय में ये वेदों की वगैरह बात ही की ना, मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग का स्वामित्व जानना चाहिए। जैसे स्त्रीवेदी आदि में, किंतु जिनमें क्षपक श्रेणी संभव नहीं है उनमें यदि उपशम श्रेणी हो सकती है तो दूसरी बार उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए जीव यथा करना, यथा योग्य जघन्य अनुभाग के स्वामी होते हैं, किंतु जिनमें उपशम श्रेणी भी संभव नहीं है, उन मार्गणाओं में दूसरी बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर नीचे गिरकर, ये लेशा वगैरह में देखा था ना हमने, तेजो लेशा वगैरह, दर्शन मोनी का क्षपण करने वाला जीव विवक्षित मार्गणा वाला होने पर जघन्य अनुभाग का स्वामी होता है, किंतु दर्शन मुनि का क्षपण करके जिन मार्गणाओं में जाना शक्य नहीं है, जैसे विभंग ज्ञान, उपशम समय दर्शन आदि, तो उनमें दूसरी बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर नीचे गिरने वाला जीव ही दर्शन मुनि का क्षपण किए बिना विवक्षित मार्गणा वाला होने पर जघन्य अनुभाग का स्वामी होता है। बात ख्याल में आई, क्षपणा को बाद में लिया इसका कारण, वो अलग अलग उनके ग्रुप्स बता रहे हैं, जिनमें दो बार उपशम श्रेणी और क्षपणा भी पॉसिबल है उसको वैसा लिया, और जिसमें वो क्षपणा के बाद वो मार्गणा नहीं बनती जैसे उपशम सम्यक है, वेदक सम्यक है, तो उनमें केवल दो बार उपशम श्रेणी चढ़ा के उतराया। सारांश यह है कि जिस मार्गणा में जिस प्रकार से जिस जीव के जघन्य अनुभाग की सत्ता रह सकती है, उस मार्गणा में उस प्रकार से उस जीव के जघन्य अनुभाग का स्वामित्व जानना चाहिए, उससे अतिरिक्त प्रकार के जीवों के उसी मार्गणा में अजघन्य अनुभाग होता है, उससे अतिरिक्त प्रकार के जीव, उससे यानी जो उसी मार्गणा में है, जैसे विभंग ज्ञानी को लिया, पर जिन्होंने दो बार उपशम श्रेणी नहीं चढ़ी है, तो उसमें अजघन्य होगा। ये जो यहाँ नियम बताए हैं या जो कोई विशिष्ट प्रकार से कैसे जघन्य हो सकता है बताया है, इसके अलावा उसी मार्गणा वाले जो अन्य जीव है उनमें अजघन्य होगा। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस मार्गणा में मोहनीय का जो सबसे कम अनुभाग पाया जाता है, उस मार्गणा में वही जघन्य अनुभाग है। ये मार्गणा की अपेक्षा जघन्य कहा, उस विशिष्ट मार्गणा में जो मोहनीय का जघन्य है उसी को जघन्य मार्गणा का जघन्य कहा, उससे अतिरिक्त शेष अनुभाग अजघन्य अनुभाग है। जघन्य के साथ केवल हम अजघन्य ही कहते, वहां उत्कृष्ट की बात नहीं कहते, जब उत्कृष्ट कहेंगे तो अनुत्कृष्ट कहेंगे, और जब जघन्य के साथ कंपेयर करना है तो अजघन्य कहेंगे। तो पहले हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट देख लिया था, अब जघन्य और अजघन्य देखा, उसका भी स्वामित्व देख लिया। इस प्रकार जघन्य स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। अब इसके बाद काल अनुगम चलेगा। हमने तीन पेज से देखना शुरू किया था, एक काल नाम का जो 13 नंबर का है, बीस पृष्ठ पर। अभी हम नया अनुगम चालू करते हैं, उसका नाम है कालानुगम, उसका नंबर है 13। ये एक जीव की अपेक्षा काल देख रहे हैं। काल का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट या जघन्य का काल चल रहा है। लगातार उत्कृष्ट उत्कृष्ट रहे तो कितने काल तक रह सकता है, लगातार अनुत्कृष्ट रहे तो कितने काल तक रहेगा। यदि जघन्य का काल जब बताना है तो लगातार जघन्य और लगातार अजघन्य, इसको काल कहा। बानुबेन को कुछ प्रश्न है? बराबर। काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। ये काल जघन्य उत्कृष्ट की बात है, और वहां हम अनुभाग जघन्य उत्कृष्ट, उसमें ऐसा लगाना, उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल और उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल, वो दोनों में चलेगा। तो जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से प्रयोजन है, तो पहले उत्कृष्ट की बात करेंगे। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओघ की अपेक्षा, मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का कितना काल है? उत्कृष्ट अनुभाग, उत्कृष्ट से प्रयोजन है का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट अनुभाग से प्रयोजन है, उत्कृष्ट काल से नहीं। उत्कृष्ट अनुभाग में दोनों काल बताएंगे, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। एक जीव के उत्कृष्ट अनुभाग लगातार रहता है सत्ता में, तो जघन्य कितने काल तक रहेगा? एक समय में। यहाँ क्या लिखते हैं? जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है?
हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट का बंद किया है तो भी वो अंतर्मूर्त तक तो उत्कृष्ट रहेगा ही, उसके बाद वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा। और लगातार लंबे काल तक चलता रहे तो भी अंतर्मूर्त है। क्या कहा? देखो, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग रहने का मिनिमम काल अंतर्मूर्त, मैक्सिमम काल वो भी अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, जैसे जो उत्कृष्ट नहीं कर रहा है, अनुत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट उसके अंतर्मूर्त तक रहा। अब उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। क्यों? जब तक वो दोबारा उत्कृष्ट का बंधन नहीं करेगा तब तक अनुत्कृष्ट ही रहेगा। जो कोई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है, उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया, उसके बाद अंतर्मूर्त तक ही उत्कृष्ट रह सकता है, तो वो अनुत्कृष्ट का करने लगा, अनुत्कृष्ट हुआ उसका। सत्ता की बात ही चल रही है, और फिर अनुत्कृष्ट के साथ एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ तो लगा उत्कृष्ट बांधने का फिर चांस नहीं है। कब तक? मैक्सिमम काल लेना एकेंद्रियों का, यानी अन्य पर्यायों का, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन, उसके पश्चात पंचेंद्रियों में उत्पन्न होगा, उत्कृष्ट बंध करेगा, तो उसका दोबारा उत्कृष्ट होगा। हाँ, करेगा ही, क्योंकि संगी में आया है तो करेगा ही। संगी में आने पर लगातार अनुत्कृष्ट नहीं रहता है उसका। हाँ, उसमें तो उत्कृष्ट हो जाएगा बीच में। तो ये अनुत्कृष्ट का लगातार काल की बात चल रही है। उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। इसी प्रकार ये जो घटित किया है, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट का काल कितना देखा हमने? जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना देखा? अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परावर्तन। यही कथन और कहां कहां किस मार्गणा में घटित होगी, ये तो ओघ की अपेक्षा बता दिया। तो कहते हैं तिर्यंश, क्योंकि असंख्यात पुद्गल परावर्तन घटित होना चाहिए ना। हाँ, एकेंद्रिय, फिर कहते वनस्पति कायिक, काय योगी, नपुसक वेदी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि और असंगी जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यंच, काय योगी और नपुसक वेदी जीवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और एकेंद्रिय वनस्पति कायिक और असंगी जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। ये एक समय कैसे घटित किया?
उत्कृष्ट के साथ आएगा।
हाँ, उत्कृष्ट के साथ आया है
एक समय में।
और उसका अंतर्मूर्त पूरा हुआ एक समय में, वो अनुत्कृष्ट हो गया।
यहाँ पे वनस्पति कायिक पे कैसे घटित होगा?
वनस्पति यानी निगोदों को लिया ना, वो यानी निगोद में भी और प्रत्येक वनस्पति ऐसा लिया। अकेले निगोद में, इतर निगोद में रहने का काल कितना है? अकेले इतर निगोद में ढाई पुद्गल, परंतु फिर वो प्रत्येक में भी आया।
अच्छा, अंदर है।
विशेषार्थ, ओब से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही है। क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर अनुभाग का बंद करके कांडक घात के बिना बहुत काल तक रहने पर भी क्या कहते हैं कांडक घात तो नहीं हुआ है फिर भी अनुभाग बंद तो किया ज्यादा कांडक घात नहीं हुआ फिर भी अंतर्मूर्त से अधिक काल तक वो उत्कृष्ट में रहना संभव नहीं है यानी अंतर्मूर्त में उसका कांडक नहीं होगा अनुभाग घटेगा उत्कृष्ट नहीं रहेगा कांडक घात के बिना ही वो तो अनुत्कृष्ट हो जाएगा यहां लिखा ना कांडक घात के बिना बहुत काल तक रहने पर भी बहुत यानी कितना रह सकता है अंतर्मूर से अधिक काल तक रहना संभव नहीं क्या रहना उत्कृष्ट रहना संभव नहीं है हाँ।
जब निषेकों की सभी स्थितियों में उत्कृष्ट अनुभव पड़ा है
हाँ, निषेकों की सभी में पड़ा है
अंतर्मूर्त काल के पश्चात सभी में वो कम हो जाएगा
हाँ, सर्वत्र उसका अनुभव घटेगा वही बताना चाहते हैं अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल तो अंतर्मूर्त ही है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके अंतर्मूर्त काल के बाद पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर सकता है दोबारा अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया परंतु उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ पंचेंद्रिय पर्याय में अपने योग्य उत्कृष्ट काल तक रहकर एक इंद्रियों में जाने के पहले उसको अनुत्कृष्ट कराया है पहले उत्कृष्ट था फिर अंतर्मूर्ति में अनुत्कृष्ट हुआ पंचेंद्रिय में रहा अनुत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट उसने बांधा ही नहीं फिर जाकर वो एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ पुनः एक इंद्रिय पर्याय में चला जाने पर और वहां असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बिताकर पुनः पंचेंद्रिय होकर उत्कृष्ट अनुभाग करने पर क्योंकि हर बार उत्कृष्ट करेगा ये बात नहीं है जब उत्कृष्ट करेगा तब उतना काल बन जाएगा इसी प्रकार तिर्यंश से लेकर असंगी पर्यंत जानना चाहिए किंतु इतनी विशेषता है कि तिर्यंश कायोगी और नपुसक वेदी में दोनों विभक्तियों का जघन्य काल एक समय है कौन से दोनों उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का अवस्थान काल अवस्थान यानी उतना का उतना रहना एक समय प्रमाण शेष रहने पर यदि कोई अन्य गति का जीव मरकर तिर्यंच हो या अन्य वेद वाला जीव मरकर नपुसक वेदी हो तो तिर्यंच और नपुसक वेदी के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल एक समय होता है यह बात ख्याल में आई अन्य में से तिर्यंच में आया हुआ जीव लेना है तो अन्य में उसने मान लेते किसी मनुष्य ने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया तो लगातार एक अंतर्मूर्त तक तो उसका उत्कृष्ट रहता है और अंतर्मूर्त होने पर उसका अनुत्कृष्ट हो जाता है अब मनुष्य में उसने वो सारा काल बिताया अब जब एक समय उसका अवस्थान का बाकी है तब वो तिर्यंच में उत्पन्न हुआ तो तिर्यंच में उसका एक समय के लिए उत्कृष्ट रहा और फिर बाद में वो अनुत्कृष्ट हो गया तो एक समय घटित होगा काय योग में भी ऐसा है अन्य योग में से उत्कृष्ट था तो उसके एक समय बाकी था तब काय योग में आ गया मनोवचन का योग में से काय योग में आया और एक समय में अनुत्कृष्ट हो गया अनुत्कृष्ट के बारे में भी ऐसा है पहले अनुत्कृष्ट था और वहां आने पर उसने उत्कृष्ट बंद किया तो भी ऐसा घटित होगा इसी प्रकार वचन योग या मनोयोग में स्थित उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जीव उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता के एक समय प्रमाण शेष रहने पर का योगी हुआ, या का योग में वर्तमान कोई मिथ्या दृष्टि, एक समय तक उत्कृष्ट अनुवाद बंधक करके दूसरे समय में मन वचन योगी या मनोयोगी हो गया, तो उसके का योग में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल एक समय होता है। तो यहाँ काय योगी के लिए बात जो कही है, क्या मनोयोगी के लिए नहीं घटित होगी? ऐसा होगा ना, अन्य योग में से मनोयोग में आया है और एक समय में उसने उत्कृष्ट किया या अनुत्कृष्ट किया, तो यहाँ एक समय घटित होगा कि नहीं होगा?
होना चाहिए,
होता भी है। तो यहाँ इस लिस्ट में उसको क्यों नहीं लिया? ऊपर हम यहाँ तिर्यंच लिए, काय योगी लिए और नपुसक वेदी लिए, पुरुष वेद के लिए भी वही घटित होगा, पुरुष वेद में आने पर एक समय घटित होना चाहिए था।
नहीं, नपुसक वेद में
तो इस लिस्ट में उनको क्यों नहीं लिया? देखो, ये कौन सी लिस्ट हम पढ़ रहे हैं?
उत्कृष्ट अनुभाग की बात है।
हाँ, उत्कृष्ट अनुभाग जगन्य तो घटित होगा एक समय वहाँ भी, परंतु क्या उत्कृष्ट अनंत काल घटित होगा?
नहीं,
ऐसे ही मार्गणाएं लेनी है। ऐसी लिस्ट यहाँ देखी है, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों घटित होंगे वहाँ पर, ख्याल में ना? तिर्यंचों में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित होता है, नपुसक वेदी में घटित होता है, एकेंद्रियों में घटित होता है, काय योग में घटित होता है, परंतु मनोयोग वचन योग का उत्कृष्ट काल ही अंतर्मूर्त है, तो उसमें ये उत्कृष्ट काल घटित नहीं होगा, ये बात बताना चाहते। जगन्य तो घटित होगा, वचन योग में आने पर एक समय में पलट गया उसका, उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ, तो उसमें भी जगन्य एक समय होगा, परंतु मनोयोग में रहने का काल कितना है? तो अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार लास्ट शब्द अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी जघन्य काल एक समय बनता है, यानी इस मार्गणा में आने के पहले अनुत्कृष्ट था, अनुत्कृष्ट का एक समय बाकी था तब इसमें उत्पन्न हुआ, या एकेंद्रीय में या तिर्यंच में या नपुसक वेद में, तो वहां भी घटित होगा।
क्या कायोग में भी उत्कृष्ट संक्लेश वाला भाव हो सकता है? मनोयोग में तो होगा, पर वचन योग में और काय योग में
क्यों नहीं होगा? तीनों ही योग में हो सकता है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। उत्कृष्ट संक्लेश भी हो सकता है, विशुद्धि भी हो सकती है, तीनों योग में होती है। संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? हाँ। योग से उसके कोई मतलब नहीं कि मनोयोग वाला ज्यादा करेगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। एकेंद्रिय, वनस्पति और असंगी में भी उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल इसी प्रकार एक समय होता है, किंतु इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय नहीं है, क्योंकि इनमें उत्कृष्ट अनुभाग बंधन नहीं होता। क्या कहते हैं? जैसे मनोयोगी वगैरह में हमने देखा था, या काय योग में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ फिर उत्कृष्ट का बंद करेगा, वैसे एकेंद्रिय में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट था, तो क्या दूसरे समय में उत्कृष्ट होगा? एकेंद्रिय के योग्य होगा, योग जैसा उत्कृष्ट नहीं होगा। वैसे ही वनस्पति और असंगी में, अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। कैसे? अन्य भाव से वो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आया है, एक समय में उसको अनुत्कृष्ट हो गया, तो नारकी के एक समय में उसका उत्कृष्ट रहा। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य, सामान्य देव भुवनवासी से लेकर सहस्रार पर्यंत तप के देव सब बादर एक इंद्रिय, सब सूक्ष्म एक इंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, अन्य भाव से लेके आया हुए वो लेना उत्कृष्ट में उसमें। पंचेंद्रिय पर्याप्त सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेज कायिक, सब वायु कायिक, सब बादर सूक्ष्म वनस्पति, सब निगोदिया, त्रस अपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैक्रिक काय योगी, वैक्रिक मिश्र काय योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, ये लो बराबर करना, विभंग ज्ञानी, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापोत लेशा वालों में जानना चाहिए। उत्कृष्ट की बात चल रही ना, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की बात।
सभी एक इंद्रिय लिया है वो तो अन्य पर्याय में चालू किया और एक समय में मरण हो गया, पीछे अंतर्मुख काल तक उत्कृष्ट रहा, वही अपेक्षा होगा ना।
हाँ, अन्य भाव से उत्कृष्ट लेके आया है, किसी के एक समय में वो
एक समय के पश्चात मरण हो गया और अंतर्मुख तक उत्कृष्ट अनुभव,
अंतर्मुख तक उत्कृष्ट रहा। विशेषार्थ, कोई मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके और उत्कृष्ट अनुभाग के काल में एक समय शेष रहने पर यदि नरक आदि में जन्म लेता है, नरक आदि में क्यों कहा, क्योंकि ये सारी मार्गणाएं बतलाए ना, ये सब लिस्ट, उसमें कहीं भी जन्म लेता है तो उनमें उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। इसी प्रकार त्रस पर्याप्त तक जानना, या त्रस पर्याप्त कहाँ लिखा है, अपर्याप्त लिखा है, त्रस पर्याप्त हो ही नहीं सकेगा ना, ऊपर अपर्याप्त लिखा है, वो होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मनोयोग को लिया, मनोयोग के पहले त्रस अपर्याप्त ही था, क्योंकि अन्य पंचेंद्रिय में से नरक में आ गए तो त्रस में से त्रस में ही आया ना, ख्याल में है ना। अपर्याप्त में कैसे ले सकते हैं, त्रस पर्याप्त में से अपर्याप्त में आया ऐसा तो ले सकते हैं हम, लब्धि अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त है ना, लब्धि अपर्याप्त में हम ले सकते हैं उसको, त्रस अपर्याप्त के जानना, वो करना वहां पर विशेषार्थ में तीसरी लाइन में लास्ट में जो त्रस पर्याप्त लिखा है वो अपर्याप्त करना। ख्याल में आया अपर्याप्त क्यों करना है, ये अधिक स्थिति के साथ आया है और एक समय में वो अनुत्कृष्ट होने वाला ऐसा जीव लिया, मनोयोग वचन योग या औदारिक काय योग में स्थित कोई जीव अपने अपने योग का काल एक समय शेष रहने पर उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके दूसरे समय में अन्य योग वाला हो गया तो उसके उस योग में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। या उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला कोई जीव मनोयोग से वचन योग या औदारिक काय योग में या वचन योग से किसी दूसरे योग में आ जाता है और वहां एक समय बाद उत्कृष्ट अनुभाग का परिघात कर देता है, यानी घात कर देता है, अनुत्कृष्ट हो जाता है, तो उस योग में उत्कृष्ट अनुभाग का काल एक समय बन जाता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके मरकर औदारिक मिश्र काय योगी या वैक्रिक मिश्र काय योगी हुआ और एक समय तक उस योग में उत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहकर दूसरे समय उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर दिया तो उन योगों में उत्कृष्ट अनुभाग का काल एक समय बन जाता है। शेष विवक्षित मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय बन जाता है। इन सब मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उत्कृष्ट का तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही होता है। दे ऊपर मनोयोग वचन योग और औदारिक का योग लिया, वहां वैक्रियक भी ले सकते हैं हम। क्योंकि ऊपर लिखा है, हाँ, वैक्रिक का योगी वैक्रिक मिश्र को भी लिया था मैंने, वैक्रिक भी है वहां पर। उन्होंने समझाने के लिए तीनों लिए हैं, वैक्रिक का योगी वाला भी होगा, मनोयोग वचन योग और वैक्रिक का योग, इनमें भी पलटना होगा, वहां भी उत्कृष्ट बंद करेगा। अब आगे हम 31 नंबर को पढ़ेंगे। अब इस क्रमानुसार इनके अनुत्कृष्ट काल का अनुगम करते हैं, जो इस प्रकार है। उत्कृष्ट का एक समय या कैसे घटित किया वो तो बता दिया उन्होंने, और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त। अब अनुत्कृष्ट को बताएंगे। नारकियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, मैंने उसने उत्कृष्ट बांधा ही नहीं तो 33 सागर होगा। इसी प्रकार सब नारकियों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि प्रत्येक नरक में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। यह बात ख्याल में आई? हाँ। अनुत्कृष्ट के साथ ही जन्मा है और पूरे लाइफ टाइम तक अनुत्कृष्ट ही रहा, उसने उत्कृष्ट का बंद किया ही नहीं। अब हम 22 पृष्ठ पर आए हैं। अर्थात पहले नरक में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल एक सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 सागर और सातवों में हुआ 33 सागर है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य प्रमाण है। ये उस पर्याय का उत्कृष्ट काल लिया है। पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल कैसा घटित करेंगे? जब पंचेंद्रिय कहेंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी को भी लेना, असंगी को भी लेना,
दोनों को लेना।
और हर एक वेद के साथ हमने 8-8 भव देखे थे, पूर्व कोटि वाले, तो स्त्री वेदी के 8, पुरुष वेदी के 8, नपुसक वेदी के 8, फिर अपर्याप्त का 1 और फिर 8-8-8, ये असंगी के हो गए और फिर संगी में आया है। संगी का लास्ट भव है वो 3 पल्ले वाला लेना, वो भूमिका। तो 96 पूर्व कोटि में एक कम करके एक 3 पल्ले ऐड करना उसमें। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के लिए वो अपर्याप्त वाला एक बीच में डालकर फिर 3-3 किए ना, वैसे नहीं लेना। 8-8-8 3 बार लेना असंगी के, और फिर संगी के भी 8-8-24 लेना, 48 में से एक कम करना, 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले का अंतिम भव। तो ये पंचेंद्रिय के लिए, और योनिमति यानी अभी अकेला एक स्त्री वेद वाला लेना है, तो आठ भव असंगी के और आठ भव संगी के, संगी का अंतिम भव भोग भूमि वाला तीन पल्ले का लेना स्त्री वेद के रहते हुए, तो उसमें 15 पूर्व कोटि और तीन पल्ले। ये पृथक्त्व का अर्थ कुछ पहले में हमने 97 लिए थे ना, 96 में से कम किया था, 95 प्लस तीन पल्ले, फिर हमने देखा था 47 प्लस तीन पल्ले, और अभी 15 प्लस तीन पल्ले। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक और मनुष्य निके कहना चाहिए। इसी प्रकार यानी कथन तो वैसा ही होगा कि पृथक्त्व पूर्व कोटि पृथक्त्व और तीन पल्ले, पूर्व कोटि पृथक्त्व और तीन पल्ले, परंतु मनुष्य में तो असंगी आते नहीं, तो संगी में घटित करना है। संगी में तीनों वेद से अर्थिक 24 हुए, एक अपर्याप्त हुआ और फिर 24, यानी यहाँ सामान्य मनुष्यों में हम 47 प्लस तीन पल्ले कहेंगे, मनुष्य पर्याप्तकों में तीन ही लेना ना, पर्याप्तक लेना, बीच में अपर्याप्त नहीं लेना, 24 में एक कम करना, 23 प्लस तीन पल्ले। और मनुष्यनी में सात और तीन पल्ले। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तक के अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्यों अंतर्मूर्त कहा?
तो काली अंतर्मूर्त है, एक भाव की अपेक्षा एक अंतर्मूर्त।
देखो एक समय क्यों नहीं घटित किया, क्योंकि एक समय में ये तो उत्कृष्ट बंधन नहीं करेगा, इसलिए अपर्याप्त जीव है, तो उसका अनुत्कृष्ट ही रहेगा, कितने एक भाव तक तो रहेगा ही रहेगा, तो मिनिमम अंतर्मूर्त, और लगातार अपर्याप्त 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 में जन्म ले तो भी अंतर्मूर्ति होता है, इसलिए जघन्य भी अंतर्मूर्त कहा और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त को उनके जानना चाहिए, यानी उनमें भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त होगा, कितने भी अपर्याप्त उनके भव लगातार क्यों न हो, कितने भी उसके लिए लिमिट है ना, हमने देखा था मनुष्य अपर्याप्त के लगातार भव कितने होंगे। भूल गए, देखो हमने क्या देखा, टोटल सभी अपर्याप्तों के 66,336, अकेले एकेंद्रियों के 66,132, फिर द्विंद्रियों के 80, तीनद्रियों के हो गए तो 60, चतुर इंद्रियों के 40 और पंचेंद्रियों के 24। 24 में असंगी के लगातार 8, संगी के, पंचेंद्रिय के, तिर्यंश के 8 और मनुष्य के 8। मनुष्य अपर्याप्तों के लगातार भव 8 हो गए, काल उसका एक अंतर्मूर्त, इसीलिए ये बात वहां भी घटित होगी। सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत के देवों के अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जैसे हमने नारकी में देखा था, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। ये अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे होगा, अनुत्कृष्ट के साथ आया है और एक समय रहकर दूसरे समय में उत्कृष्ट का बंध किया है, तभी ये अनुत्कृष्ट एक समय होगा, इसीलिए सहस्रार तक को ही लिया, क्योंकि वे उत्कृष्ट का बंध कर सकते हैं, ऊपर उत्कृष्ट का बंध नहीं होता, इसलिए उनको नहीं लिया यहाँ पर। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। जघन्य काल दोनों का अंतर्मूर्त लिया।
ये अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अनुत्कृष्ट ही होता है, कमी होता है बंद।
यानी उत्कृष्ट उनके लिए जो उत्कृष्ट है वो अंतर्मूर्त में उन्होंने कोई वहाँ विषय योजना की तो ऐसा लेना पड़ेगा ना। देखो इसमें लिखते हैं ये विशेषार्थ के लास्ट है, ये कल हम पढ़ेंगे, परंतु यहाँ नीचे से अभी प्रश्न है तो ले लेते हैं। विशेषार्थ में नीचे से तीन लाइन चौथी से शुरू करते हैं। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट अनुभाग का घात न होने पर वह जीवन भर रह सकता है और घात होने पर उसका अंतर्मूर्त काल उपलब्ध होता है। जघन्य काल की बात है ना, यानी एक अंतर्मूर्त में घात होगा तो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो गया, तथा जीवन के अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उत्कृष्ट अनुभाग का घात होने पर अंतिम अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। ये घात क्यों करता है विषय योजना में, ये विशेषता हम कल पढ़ेंगे पूरा ही, अभी थोड़ी अपनी शंका थी इसका, उसका समाधान आ गया। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होरो। मयंक भाई।